पिछले अध्याय में आपने देखा कि वेद और मानवी हल्दी समारोह से लौटते हैं और वेद एक अजनबी से मिलता है। मानवी को चक्कर आते हैं और वेद उसकी मदद करता है। इस अध्याय में मानवी और वेद कमरे में जाते हैं और अंतरंग हो जाते हैं। रमेश मेहरा और वेदांत मरोड़ निराश हैं और लड़की पर गुस्सा करते हैं। वे एक नई योजना बनाते हैं, जबकि वेद और मानवी रात भर एक साथ रहते हैं। वेदिका चाहती है कि उनका रिश्ता मजबूत हो। अब नेक्स्ट। सुबह सुबह मानवी की आंख खुली। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और शरीर बेहद भारी लग रहा था, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसने उठने की कोशिश की लेकिन हिल भी नहीं पाई। तभी उसने आंखें पूरी खोली। वो वेदांत की बाहों में थी। वेदांत की मजबूत बाजू उसके ऊपर पड़ी थी और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि दोनों के शरीर पर कुछ भी नहीं था। मानवी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। घबराकर उसने झटके से उठने की कोशिश की। उसकी हरकत से वेदांत की भी आंख खुल गई। वो अभी भी उनींदा था और सिर पकड़कर बोला, क्या कर रही हो मानवी? मानवी थोड़ी दूर हट गई, अब भी ब्लैंकेट में खुद को छुपाए हुए। उसकी आंखों में सवाल थे और आवाज़ कांप रही थी। तुमने मेरे साथ क्या किया? वेदांत ने उसकी तरफ देखा, फिर खुद की ओर देखा। उसके चेहरे पर भी हैरानी थी। कुछ पल तक दोनों खामोश रहे। फिर अचानक वेदांत को याद आया कि पिछली रात क्या हुआ था। यादें वापस आते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। मानवी उसकी तरफ देख रही थी, डरी हुई, उलझी हुई, समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। धीरे धीरे मानवी के दिमाग ने भी काम करना शुरू किया। उसे याद आने लगा कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो उसकी मर्जी से ही हुआ था। हाँ, वो नशे में थी, लेकिन सवाल ये था कि उसे नशा हुआ कैसे? उसने तो खुद से कोई ड्रिंक ली ही नहीं थी। ये सोचते हुए वो घबराने लगी। अब उसका गुस्सा भी धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि वो खुद ही चलकर वेद के पास आई थी। उसे साफ याद आया कि उसी ने वेद से कहा था कि वो उसे कमरे में ले चले। मुझे वॉशरूम जाना है, मानवी ने धीरे से कहा। चली जाओ, वेद ने थके हुए स्वर में जवाब दिया। मगर कैसे? मुझे ये ब्लैंकेट चाहिए, मैं इसी में जाऊंगी। वो जल्दी जल्दी ब्लैंकेट को अपने चारों ओर लपेटते हुए खड़ी हो गई। वेदांत ने भी कुछ नहीं पहना था, लेकिन उसे जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मानवी ने नज़रें फेर ली और दूसरी तरफ चेहरा करते हुए बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाकर उसने गर्म पानी चला दिया, क्योंकि उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा था। वो मिरर के सामने खड़ी हुई और अपने आप को देखा। उसके पूरे शरीर पर निशान थे। बिना शक ये निशान वेद के ही दिए हुए थे। मानवी को अचानक अपने अंदर एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। ये सब तो वेद का ही काम था, उसने खुद से कहा। लेकिन अगला ही पल उसे ख्याल आया, मगर मैंने शराब पी कब थी? मैंने तो कोई ड्रिंक ली ही नहीं थी। मानवी बाथरूम में खड़ी यही सोचती रही। उसे वेद के सामने जाने से शर्मा रही थी, लेकिन धीरे धीरे पिछली रात की हर बात याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उस रात जो कुछ हुआ था उसमें वो खुद बराबर की भागीदार थी, इसलिए वो वेद को कसूरवार नहीं ठहरा सकती थी। उसने कैसे वेद का साथ दिया था उसे याद आ रहा था। आखिरकार बाहर तो आना ही था। गर्म पानी से नहाने के बाद उसके शरीर का दर्द कुछ कम हो गया था, लेकिन सिरदर्द अभी भी बना हुआ था। उसने बाथरूम में रखा बाथरोब पहन लिया और बाहर आ गई। वेदांत अब तक अलमारी से लोअर और टी शर्ट निकालकर पहन चुका था और बेड पर लेट गया था। असल में वो पूरी रात की बातें सोच रहा था और ये भी सोच रहा था कि आखिर उन्हें नशा हुआ कैसे। उसे साफ याद था कि उसने तो ड्रिंक की ही नहीं थी। आ जाओ मानवी, रेस्ट कर लो, वेदांत ने नरमी से कहा। मैं अभी दवाई मंगवाता हूँ, मेरा भी सिर दर्द से फटा जा रहा है। जब मानवी बाथरूम से बाहर आई तो उसने कमरे की हालत देखी। सारा फर्श उसके कपड़ों से भरा हुआ था। साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और उसके अंदर के गारमेंट्स चारों तरफ बिखरे हुए थे। वहीं पर वेद के कपड़े भी पड़े हुए थे। मानवी को अपने आप पर बेहद शर्मा रही थी। उसके दिमाग में रात की हर घटना फिर से तैरने लगी। उसे याद आया कि कैसे वेद ने उसके कपड़े उतारे थे और वो भी कुछ कह नहीं पाई थी। उस पल की याद से उसके चेहरे पर हल्की लालिमा दौड़ गई और दिल में अजीब सी घबराहट उठी। मानवी में बैठने की भी हिम्मत नहीं थी। वो बेड की दूसरी साइड पर जाकर चुपचाप लेट गई। वेदांत ने तुरंत गौतम को फोन लगाया। गौतम, जल्दी से मेडिसिन लेकर आओ, कोई ऐसी दवाई जो नशे का असर भी करे और सिरदर्द भी ठीक कर दे। और सबसे ज़रूरी बात, कल तुम होटल के सीसीटीवी कैमरे चेक करो। होटल में हल्दी फंक्शन था, वहाँ ज़रूर कैमरे होंगे। नहीं तो जो शादी की रिकॉर्डिंग हो रही थी वो चेक करो। देखो मेरे पास जो आदमी बैठा हुआ था वो कौन था, और साथ ही जिसने मुझे जूस दिया था वो कौन था। उसे वेटर का पता लगाओ, बहुत ज़रूरी उस आदमी के साथ मिला हुआ था। क्या हुआ सर? गौतम ने पूछा। पहले तुम दवाई लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। जो मैंने कहा है वो ज़रूर करो, वेद ने आदेश दिया और फ़ोन रख दिया। वो बाथरूम चला गया। उधर मानवी के दिमाग में भी बातें जुड़ने लगीं। उसे याद आया कि जब वेद ने अपने हाथ से उसे जूस दिया था उसने वही जूस अवनी को देने की कोशिश की थी, लेकिन अवनी ने मना कर दिया और वो जूस मानवी ने ही पी लिया था। मतलब आधा जूस उसने पिया और आधा वेद ने। अब उसे समझ आया कि ये किसी की चाल थी, कोई उन्हें फंसाना चाहता था, कोई चाहता था कि वेद के साथ किसी लड़की का नाम जुड़े। बलवंत और वेदिका दोनों रूम में चाय पीते हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। अवनी अभी उठी नहीं थी, वो सोई हुई थी। मुझे लगता है तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू में कुछ ज्यादा ही खो गया है, बलवंत ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे अच्छी बात है, मानवी उसके साथ होंगी तो हमें उसकी फिक्र नहीं रहेगी। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मानवी ने वेद को बस में किया कैसे। तुम्हारा बेटा किसी के बस में होने वाला तो कभी नहीं, बलवंत हंसते हुए बोला। लगता है मुझ पर ही गया है, मैं भी तो ऐसा ही था। तुमने मुझे ऐसा बस में किया, देखो ना फिर। अपनी बात छोड़ो, ये देखो मेरी नन्ही सी पोती, यही इसकी वजह है। पंडित जी ने कहा था कि दो औरतें उसके जीवन में आएंगी, एक उसकी बीवी है और एक उसकी बेटी। वेदिका सोई हुई अवनी पर नजर डाल रही थी। उसके चेहरे पर इतना प्यार और नरमाहट दिखाई दे रही थी कि मानो सब परेशानियां, थकान और चिंता पल भर में गायब हो गई हों। उसने सोचा, सचमुच बहुत खुश हैं हम। इस नन्ही सी जान के आने से हमारी जिंदगी में जो खुशियों की भरमार हुई है उसका कोई हिसाब नहीं। इस छोटे से अस्तित्व ने उनका कमरा ही नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी भर दी है। दोनों को अपनी पोती से बेहद प्यार हो गया था। इन दो चार दिनों में ही उनका जुड़ाव इतना गहरा हो गया था कि अब अवनी से बिना उनका मन कहीं नहीं लगता था। वेद और वेदिका दोनों चुपचाप अवनी को देख रहे थे। उसकी मासूम हंसी, उसकी छोटी छोटी हरकतें और वो नन्हा सा हाथ, सब कुछ उनके दिल को छू रहा था। थोड़ी ही देर में गौतम मेडिसिन लेकर आ चुका था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वेद ने उसे देखा। गौतम तुरंत उठकर दवाई लेने के लिए बढ़ गया। मानवी ने दवाई पकड़ ली और धीरे से कहा, सर अगर आप मुझे, आपसे कुछ पूछना था, मैं अंदर आ जाऊं? गौतम, नहीं, वेद ने जल्दी से रोकते हुए कहा। उसने गौतम की तरफ देखा और फिर उसे आने से मना कर दिया। मैं दवाई लेने के बाद तुम्हें फोन पर ही सब बताता हूँ, वेद ने गौतम को वापस भेज दिया। क्या जब गौतम छानबीन के लेगा तो वेदांत का नाम सामने आएगा? क्या वेदांत अपनी साजिशों से पीछे हटेगा?
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग दीजिए। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें।